अब से कुछ ही देर पहले भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हो गए और श्री रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। लगभग 5 दशक तक राजनीति की ऊंचाइयों को देखने के बाद प्रणब दा आखिरकार रिटायर हो गए हैं। हमारे साथ भारत से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रजत अमरनाथ जी। रजत जी ने प्रणब मुखर्जी पर पोल्टू टू प्रेसिडेंट नाम की किताब भी लिखी है, इसलिए कहा जा सकता है कि वे प्रणब दा को बेहद अच्छी तरह जानते हैं। रजत जी, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद जीता।
सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, ये पोल्टू टू प्रेसिडेंट इसका क्या मतलब है? पोल्टू आप किसको कह रहे हैं?
पोल्टू प्रणब मुखर्जी का बचपन का नाम है, जो उनकी माँ उन्हें बड़े प्यार से बुलाती थी, तो इसलिए पोल्टू। मेरी किताब में पूरा ये है, पोल्टू मतलब बचपन से लेकर और राष्ट्रपति बनने तक ये किस तरह का व्यक्तित्व था इनका, और ये किस तरह से इन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई, इसलिए इस किताब का नाम है पोल्टू टू प्रेसिडेंट, मतलब बचपन से लेकर राष्ट्रपति तक। ये बचपन का नाम है जो इनकी माँ का दिया हुआ है।
अक्सर कहा जाता है कि बचपन में लोग अपने स्वभाव से ये बता देते हैं कि वो किस तरह का करेंगे, क्या प्रणब मुखर्जी के लिए भी ये कहा जा सकता है?
जी, प्रणब दादा जो है बचपन से ही जो है पैसा बचाना सीखा था। इनकी माँ इनको पैसा देती थी बाजार से सामान लाने के लिए, जैसे उन्होंने दिया 1 रुपया दिया कि 1 रुपये में दाल लानी है, तो वो वहां जाके पंसारी की दुकान पे जाके मोल भाव करते थे और उसी दाल को पहले 90 पैसे में लेते थे, उसके बाद उसमें भी 5 पैसे अपने जेब खर्च के लिए बचाते थे और उसमें से सिर्फ 85 पैसे की दाल लेके आते थे और माँ को हिसाब पूरे 1 रुपये का देते थे, जिसमें 1 रुपये में 10 पैसे की कुछ और चीज लेके आते थे। तब माँ पूछती थी इनसे कि भाई ये 10 पैसे कहाँ से आए, तब ये बताते थे कि मैंने मूल भाव किया और पैसा बचाया और 5 पैसा मैंने अपनी जेब खर्च के लिए बचा लिया। तो ये बचपन से ही पता चल गया था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम करेंगे।
और प्रणब मुखर्जी ने भारत के साथ साथ जो बजट हैं वो पेश किए हैं, शायद ये उसी की बानगी है।
जी बिल्कुल, उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर तो बजट पेश किया ही, बल्कि जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए वो बकायदा इनसे सलाह के लिए राष्ट्रपति भवन जाते रहे। इसीलिए जब कल नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि एक पिता की तरह दादा ने मेरा ध्यान रखा और मेरे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया कि सत्ता में कैसे बने रहना और लोगों का कैसे ध्यान रखना, ये कहते कहते प्रधानमंत्री जी का गला भी रुंध गया था। तो ये अपने आप में साबित करता है कि ये भले ही कांग्रेसी थे प्रणब दा, लेकिन देश के लिए उन्होंने काफी सलाह भी दी है नरेंद्र मोदी जी को।
हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्या प्रणब मुखर्जी के लिए राजनीति में सब कुछ स्वर्णिम रहा या उन्होंने कभी खराब समय भी देखा?
प्रणब मुखर्जी ने कुछ खराब समय भी देखा है, जब लोगों को आस लगी थी कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और इनका नाम आगे ना आके कोई दूसरा नाम आ गया तो थोड़ा खिन रहे थे और पार्टी भी छोड़ दी थी। उस समय इनके साथ दूसरे लोग भी शामिल थे जिन्होंने छोड़ी थी पार्टी।
अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि व्यक्तिगत तौर पर प्रणब मुखर्जी कैसे हैं, परिवार और दोस्त रिश्तेदार इस तरह की चीजों को निभाते हैं या राजनीति में जाने के बाद वो हाई हेडेड जैसे लोग हो जाते हैं वैसे हुए?
नहीं, बड़े सिंपल आदमी हैं, सब लोगों से साथ निभाते हैं, बल्कि उनका तो कहना यह था जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा उसके बाद जिस स्कूल में पढ़ता था वहां तक मैं सड़क बनाऊंगा। उनके दोस्त आज भी मौजूद हैं जो उनको अभी भी याद रखते हैं, उनके बचपन की बात है, उनके इस समय की बात है, सारी चीजें वो याद रखते हैं। साथ में जैसे आपने बताया किस तरह के हैं, मैंने बताया ये पूजा पाठ में रोजाना कम से कम 40 मिनट ये अपने पूजा पाठ को देते हैं, अपनी एक्सरसाइज को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने बेटा बेटी पत्नी सबको समय देते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सत्ता में आने के बाद जो है इनका जिसे कहते हैं कि इनके दिमाग पे सत्ता चढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं रहा, शुरू से सिंपल आदमी रहे। सिंपल आदमी ना रहे होते तो नरेंद्र मोदी इनके पास कभी नहीं जाते, क्योंकि जिस तरह से सिंपल आदमी, नरेंद्र मोदी भी अपने आप में सिंपल आदमी कहे जाते हैं। नरेंद्र मोदी कभी भी इनसे सलाह के लिए चले जाते थे या इनसे सलाह के लिए कोई भी जाता था, ये पूरी तरह से उनको सलाह देते थे।
सर एक और चीज, राष्ट्रपति के तौर पे ये पिछले 5 सालों को किस तरह से देखेंगे आप, इनके टेन्योर में क्या हुआ और कैसे राष्ट्रपति साबित हुए प्रणब मुखर्जी?
देखिए प्रणब मुखर्जी को अगर मैं आज के समय में एनालाइज करूं तो जैसे कहा जाता सब देशभक्त होते हैं, लेकिन एक पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी देशभक्ति दूसरे तरह से भी साबित की। उन्होंने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी, जिसमें कसब था, याकूब मेमन था और साथ में अफजल गुरु था। इन्होंने एक बार को नहीं सोचा कि मैं जिस सत्ता ने मुझे राष्ट्रपति बनाया उनके हितों पे आंच आएगी। उन्होंने जैसे ही इनकी दया याचिका आई उन्होंने खारिज कर दी। इन्होंने करीब करीब जो है 97% दया याचिकाएं खारिज की। तो कहा ये जा सकता है जो इनका ये टेन्योर रहा है ये स्वर्णिम टेन्योर रहा है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने बात कही हो कभी भी, या अर्थव्यवस्था के लिए सजेशन दी हो। कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो रबर स्टैंप रहता है, लेकिन कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने रबर स्टैंप की तरह काम किया हो।
रजत जी बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगा, अब रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो क्या भारत की राजनीति बीजेपी और आरएसएस से संबंध रखते हैं कोविंद साहब, तो भारत की राजनीति क्या आप करवट लेने वाली है, क्या राष्ट्रपति दूसरे तरीके से काम करेगा?
देखिए अभी जो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति बने हैं वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, वो भी काफी सिंपल आदमी रहे हैं और वो गवर्नर भी रहे हैं और बिहार जैसे प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, जहाँ पे कहते हैं अराजकता सबसे ज्यादा, जंगल राज सबसे ज्यादा, उन्होंने किस तरह से उसको संभाला है, उनके पास क्या क्या फाइल्स गई होंगी उनको किस तरह से, इसलिए वो बिहार के लोगों के भी पसंद रहे हैं। और अब जब वो राष्ट्रपति बनेंगे बने हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो भी रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे या आरएसएस का चेहरा बन के रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो है देश का होता है। अब उनको भी देश के लिए सारा समझना है सोचना है, उनके पास बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने का वक्त आएगा जब उनको पूरी तरह से अपने विवेक से काम लेना है। जब ना उन्हें आरएसएस का सोचना है ना सत्ता पक्ष का सोचना है, उनको ये सोचना है कि देश का हित किस में है। तो ऐसा लगता है कि जो रामनाथ कोविंद की शिक्षा रही है आरएसएस के थ्रू जितना भी रहा है वो पूरा अपने विवेक का इस्तेमाल करके करेंगे।
रजत जी इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।